भजन संहिता 105, भजन 105 पद 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ। हमें यहां बहुत सी बातों के बारे में उपदेश दिया गया है। पहला, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, दूसरा उसका नाम लेने के लिए, और तीसरा लोगों के बीच उसके कामों का प्रचार करने के लिए। पहले पद में 3 उपदेश है, दूसरे पद में वो हमें प्रोत्साहन देता है कि जब हम उसकी स्तुति करें तब उसके लिए भजन गाएं और उसके सब अद्भुत कामों का वर्णन करें। परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होता है जब हम उसके बारे में बात करते हैं। एक वचन है जो बताता है कि जब भी आप उसके बारे में बात करते हैं वो कान लगाकर सुनता है। मलाकी 3:16-17 पद। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसका नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। हे मनुष्यों, उसके कामों का प्रचार करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके बाद आगे परामर्श दिया गया है, भजन 105 पद 3। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो और आनंदित रहो। भजन 105 पद 3 में आगे लिखा है, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो और इस आज्ञा का पालन करें। भजन 105 पद 4, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यही नहीं वरन भजन संहिता 105 पद 5, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हमें क्या करना चाहिए, पद 5 में ये परामर्श दिया गया है। जब आप यूं ही बैठे हुए सोच रहे हो मैं क्या करूं, भजन 105 खोले और आपको करने के लिए बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। जो चीजें वहां आपको मिलेंगी वे बहुत आशीष देने वाली होंगी, परंतु आपको इस आदेश पर चलना होगा। भजन 105 पद 6-11 तक, हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने हजार पीढ़ियों के लिए ठहराया है, वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वो बांट में तुम्हारा निज बाग होगा। इब्राहिम के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा पर ध्यान दे। उसने इसहाक के साथ भी यही शपथ लेकर दोहराई थी और याकूब के साथ भी इस वाचा की पुष्टि की, मैं तुझको तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश इस रीति से दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी। परमेश्वर ने उनके साथ ये प्रतिज्ञा तब की थी जब वे बहुत थोड़े जन थे। सच तो ये है कि वे उस देश में परदेशी थे जब परमेश्वर ने कहा, चारों ओर देख, जहां तक तू देख सकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण मैं तुझे देता हूं। बेथेल के ऊपर से परमेश्वर ने याकूब से कहा, याकूब चारों ओर देख, क्योंकि ये देश मैंने तुझे दिया है। यही बात उसने इब्राहिम से इसी स्थान पर कही थी। भजन संहिता 105 पद 12 और 13। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। वे कुछ समय रुककर देश में चारों ओर घूमते रहे, जैसे खानाबदोश एक स्थान से तंबू उठाते और दूसरे स्थान में तंबू लगाते हैं, जहां उनके पशुओं को चारा मिलता है। वो पूरा देश उनका था, जिसको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी। भजन 105 पद 14। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था। इब्राहिम के इतिहास को देखें तो परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण अबीमेलेक राजा और फिरौन की ताड़ना की। भजन 105 पद 15 कि मेरे अभिषक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर अपने अभिषक्तों और अपने नबियों की रक्षा करता है। भजन 105 पद 16 से लेकर 21 तक। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वो लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत बेचकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। यहां भजनकार वही करता है जो इसराइली लोग किया करते थे। अपने इतिहास को दोहराना। प्रेरितों के काम की पुस्तक में स्तिफनुस ने लोगों के लिए इसी इतिहास को दोहराया था। यहां भजनकार उनके इस महान इतिहास के कुछ भाग को दोहराता है कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को उनके आगे मिस्र में भेजकर अकाल के दिनों में भोजन देकर उन्हें बचाया, और परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन के घर का मुखिया बना दिया, और वो सब चीजों पर प्रभुता करने लगा। भजन 105 पद 22 कि वो उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। इस तरह राजा के बाद यूसुफ का पद था। वो मिस्र के राजकुमारों को बंदी भी बना सकता था। उसने पुरनियों को ज्ञान सिखाया। भजन 105 पद 23 से लेकर 30 तक। फिर इसराइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके द्रोहियों से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। इन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को ना टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। मेंढक राजा के बिस्तर और हर जगह बहुत आयत से भर गए थे। भजन 105 पद 31 से लेकर 37 तक। उसने आज्ञा दी तब ढांस आ गए, और उनके सारे देश में कुटकियां आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि की संति ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई, और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए, और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला, और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलोटों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नाश किया। तब वो अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। परमेश्वर अपने लोगों को सोने और चांदी के साथ मिस्र से निकाल लाया था। भजन 105 पद 37 और 38। और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। मेरे विचार में वे लोग मेंढक, कुटकियों, ढांस, ओलों और टिड्डियों से थक गए थे। भजन 105 पद 39। उसने छाया के लिए बादल फैलाया, वो बादल जिसके द्वारा उनका मार्गदर्शन होता था, वो मार्गदर्शक से कहीं अधिक एक छाता था। वे लोग इस गर्म जंगल से होकर जा रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसने उनके ऊपर बादल फैलाया कि उन्हें छाया मिले। इतना ही नहीं, जब बादल चलता था तब वे चलते थे, वे बादल की छाया के नीचे चलते थे। जब उन्हें आवश्यकता होती थी तब परमेश्वर ने बादल को उनके लिए छत की तरह प्रयोग किया। जब वे लाल सागर को पार कर रहे थे तब परमेश्वर ने बादलों को उनके पीछे लाकर धुआं बनाया, ताकि उनके पीछे मिस्रियों को ना मालूम पड़े कि यहां क्या हो रहा है। यही बादल जो इनका मार्गदर्शन करता था पीछे जाकर ठहर गया और मिस्रियों के लिए घना धुआं बन गया। इस तरह परमेश्वर ने बादल को कई तरह से प्रयोग किया। भजन 105 पद 39। और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की, ताकि वे रात को भी बाहर जा सके। परमेश्वर की उस आग के प्रकाश में जो उनके ऊपर रहता था। भजन 105 पद 40। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना उन्हें दिया। भजन 105 पद 41 से लेकर 44 तक। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला, और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। वो अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया, और उनको अन्य जातियों के देश दिए, और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। परमेश्वर उनको इस देश में ले आया, और उन्होंने यहां की दाख की बारी, फल और लोगों को अधिकार में कर लिया। उन्होंने विरासत में सब कुएं और जो कुछ बनाया था ले लिया। भजन 105 पद 45। कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें, या की स्तुति हो। इब्रानी भाषा में या की स्तुति को हालेलुया अर्थात यहोवा की बड़ाई हो कहते हैं।